क्या बोरिंग का पानी क्यों नहीं पीते? क्योंकि जो कुएं का पानी आता है उसमें तो मिट्टी भी आती है, फिर भी आप वही पीते हैं। हमारे यहाँ पर जल दो तरह का माना गया, एक अहिंसक और एक शुद्ध। जो अहिंसक और शुद्ध हो वही श्रेष्ठ है, जो अहिंसक ना हो और मात्र शुद्ध हो उसको हम नहीं उपयोग में लेते। जितनी गहराई से पानी आएगा उतना शुद्ध तो होगा, लेकिन उसमें अहिंसा का पालन नहीं हो सकेगा। उसकी जीवानी जब छान करके हम उसी रिसोर्स तक, जहाँ से कि हमने वो पानी लिया है, वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे, इसलिए उसमें जीव रक्षा का कहीं कोई पालन नहीं हो पाता है। और कुएं के पानी से जहाँ से हमने पानी लिया है उसी तक हम और उस जीवाणी को भेज सकते हैं। इसलिए अहिंसा की दृष्टि से देखा जाए तो वह पानी ही, कुएं का पानी ही श्रेष्ठ है। आचार्य महाराज ने अभी इसमें ढील नहीं दी है, वो कह रहे हैं कि जब तक चले तब तक जो है वो अपन कुएं का पानी ही लेंगे। जहाँ पर कुआ नहीं है वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने को सीमित कर लेंगे। लेकिन हम इस चीज़ को आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे कि कल तक कुएं होते थे और आज धीरे धीरे जब हम और सारी चीज़ें कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं हम इस चीज़ को भी ध्यान में रख रहे हैं। अब तो एक नई चीज़ जो सुनने में आई है, शुरू भी हो गई है, कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को कह रही है कि अपने यहाँ पर कुछ इस तरह के स्थान बनाए आप जिनमें कि बारिश का जल और इकट्ठा हो। तो आचार्य महाराज ने इसकी परमिशन दे दी है कि जो बारिश का जल नीचे विशेष रूप से इकट्ठा किया जाता है उसमें जीवाणी की सुविधा है, तो हम उससे पानी को खींच करके और उसी में पानी के सोर्स में पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो पानी तो हम फिर भी ले लेंगे। बहता हुआ नदी का पानी भी लिया जा सकता है, कुएं का पानी और बहता हुआ नदी का पानी। और ये जो तीसरी चीज़ है कि वाटर टैंक जो है नीचे बनाए जाएं और इस तरह से शुद्ध, जिसमें कि जीवराशि उत्पन्न नहीं होती, मुझे अभी किसी ने बताया कि उनके यहाँ बना हुआ है, आप नहीं तो बताया था, वर्षों से बना हुआ है, उसको जरा सावधानी पूर्वक अगर हैंडल करते हैं तो कोई जीवराशि उसमें पैदा नहीं होती और हम शांति से अपना पानी, तो वही है, वो जो वहाँ है वो यहाँ है, आपने ये खोला सो वो यहाँ आ गया, ये बंद किया उधर से खोला सो उधर चला गया, वही पानी चला गया। अगर अपन इस तरह विचार करें तो बहुत मुश्किल है कि अपन इसको ठीक मान पाएंगे। जो वाटर वर्क से फिल्टर होकर के और वाटर सप्लाई होती है नल में, उस पानी के साथ क्या जीवानी और क्या हम पालन करें। इसलिए हैं अभिषेक, क्या महाराज जी वगैरह भी बोरिंग का पानी लेने लगे कुछ संघों में, लेकिन आचार्य महाराज ने अभी परमिशन नहीं दी, तो हम उसको दोषी भी नहीं मान रहे हैं कि जो लोग ले रहे हैं वे दोषी हैं, पर हम नहीं ले रहे हैं तो हमें अपना कारण बताना पड़ेगा कि भाई हम इसलिए नहीं ले रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो ले रहे हैं वो गड़बड़ है, कल के दिन हो सकता है कि 2-5-10 साल के बाद और ये स्थिति आए कि आचार्य जी को परमिशन देनी पड़े। देखिए है ही नहीं, ये कहना बहुत आसान है, क्यों नहीं है इस पर विचार करना चाहिए, अपनी सुविधा के लिए ना, ये बताओ अपनी सुविधा के लिए, वास्तविकता तो नहीं है। अपन लोग इसी तरह से जो है धीरे धीरे करते जाएंगे तो एक दिन सारी चीजें खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हम इसका भी तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और सब दुनिया की चीजों के लिए इतना एफर्ट करते हैं छोटी छोटी सी चीज पाने के लिए, और इसके लिए नहीं कर सकते। अपनी एक परंपरा जो कि खराब नहीं थी, अच्छी परंपरा थी, उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते, जबकि साइंस कह रहा है कि ये जितनी भी आयोडीन की कमी हो रही है वो उसका कारण है कि वाटर में आयोडीन की धीरे धीरे जो है परसेंटेज घटती जा रही। क्यों घटती जा रही? 60-70 फीट से ज्यादा नीचे का पानी निकाला जाए तो उसमें आयोडीन होती नहीं, 70 फीट तक के वाटर में आयोडीन होती है, फिर आयोडीन खाने के रस से जरूरत नहीं पड़ती। तो जो लोग कुएं का पानी पीते हैं उनको आयोडीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 60-70 फीट तक का ही पानी कुएं में निकाला जा रहा है, ये साइंस कह रहा है। और हम और गहरे से 100-200 फीट नीचे से पानी निकाल रहे हैं, उसमें से तो आयोडीन है ही नहीं, तो हमें एक्स्ट्रा आयोडीन लेना पड़ रही है। हम अपने हाथ से जो है इस तरह करें और फिर कहें कि नहीं चूंकि मजबूरी है, तो मजबूरी कह करके अपन उस चीज को इग्नोर नहीं करें। वास्तविकता तो वास्तविकता है, हमें करना तो ये चाहिए था, हम कर नहीं पा रहे हैं, ये हमारी अपनी कमी है भैया। महाराज जब आप आपस में महाराज से नमोस्तु करते हैं दोनों महाराज, तो फिर पिछी हाथ में क्यों लेते हैं, जबकि पिछी तो जो है जमीन को साफ करने के काम आती है। अरे वाह, बच्चों ने लिख दिया देख करके कि महाराज ये करते रहते हैं, ये झाड़ू नहीं है बाबा, ये झाड़ने के लिए नहीं है, ये तो जो है संयम का उपकरण है, संयम के पालन के लिए, किसी जीव का घात ना हो जावे। छोटे छोटे जीव जो दिखाई नहीं पड़ते हैं वो भी इस मयूर पिच्छी जो कि अत्यंत मुलायम होती है, इतनी सॉफ्टनेस है इसके अंदर, इतनी सुकमालता है, दो गुण हैं, वैसे तो पांच गुण इसके हैं, ये धूल को ग्रहण नहीं करती, ये पसीनों को ऐसे शरीर पर लगा देने के बाद ये पसीने को ग्रहण नहीं करती, ये बहुत हल्की होती है, पूरी की पूरी इतनी दिख रही है आपको, लगता होगा कि बहुत बजंद है, तौल के देखें तो बजन निकलेगा इसका, लेकिन चीटी चली जा रही है उसके ऊपर, ऐसी रख दे में चीटी आसानी से नीचे से मूव कर जाएगी, उसको बिल्कुल वेट नहीं लगेगा, वेटलेस ये, इतना इसका इसका जो नीचे का पोर्शन है वो इतना कहना चाहिए विलक्षण है ये कह लीजिए, और डेलिकेट तो इतना है कि अगर आपने जरा सा जोर से रगड़ दिया नीचे तो ये सब खराब हो जाएगी, इसलिए केयरफुली हैंडल इसको, जो जो हैंडल करेगा तो केयरफुल हैंडल करना पड़ेगा इसको, ये सामान्य चीज, और मृदु इतनी है कि इसका एक रेशा निकाल करके और आंख में भी घुमा दिया जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी, इतनी सॉफ्टनेस इसके भीतर होती। तो ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि क्यों अपने पास रखते हैं, ये प्रतीक है संयम का, ये जिसके हाथ में होती है मालूम पड़ता कि वो संयमी है, वो अपना जीवन पूरा संयम पूर्वक सावधानी, संयम का मतलब अनुशासन, सावधानी, तो अनुशासन पूर्वक सावधानी पूर्वक लापरवाही से नहीं जिएगा, वो सावधानी पूर्वक जिएगा, इसका प्रति। इसलिए आपस में जब मुनि मुनि महाराज जी प्रणाम करते हैं तो एक दूसरे संयमी को प्रणाम कर रहे हैं, तो संयम के उपकरण के साथ ही प्रणाम करते हैं हम, इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी आरती उतारने से पहले हमें हाथ में पिछी दे दो फिर बाद में आरती उतारना, लेकिन कई लोग जो है पिछी तो पहले रखी रहने देते, पहले आरती उतार लो, आहार हो गए फिर आरती उतारो फिर पिछी देंगे, अभी पिछी तो हाथ में आई नहीं है, जब हाथ में आ जाए पूरा संयम का उपकरण हाथ में आ जाए फिर उसके बाद जो है आप आरती उतारो इस वेश की, ये वेश जो है इसके बिना अधूरा है, पिछी कमंडलू के बिना ये कभी अपने से अलग नहीं की जा सकती, कमंडल तो फिर भी एक बार कोई और हाथ में पकड़ सकता, ये नहीं कि हमारी ये पकड़ के ले चलो आप, ऐसा नहीं कह सकते, ये अपने हाथ में ही रखना पड़ेगी, ये उपकरण है, ये इसको संयम का प्रतीक मानते हैं, इसलिए जब भी प्रणाम वगैरह करते हैं। हमारे पास और क्या है, लिखा है कि श्रावक के पास द्रव्य है, भगवान की पूजा भक्ति करता है तो श्रावक खाली हाथ नहीं करता, वो कुछ ना कुछ समर्पित करता है, और मुनि महाराज भी खाली हाथ नहीं करेंगे, उनके हाथ में यह संयम का उपकरण इसी को हाथ में लेकर के भगवान की वंदना इत्यादि या आपस में नमस्कार इत्यादि करेंगे, इसलिए है ये, इसको आप ये नहीं मानिएगा कि ये जमीन साफ करने वाली चीज है, नहीं, इसके लेने वाला जमीन साफ नहीं करता, अपने भीतर की जमीन साफ करता हूं, बाहर की वाली जमीन नहीं है ना। नीम कड़वा होता है या आदमी की जिह्वा और नीम का रिश्ता, आपने बहुत अध्यात्म की बात पूछ ली, लगेगा तो प्रश्न बहुत सामान्य सा, वास्तव में देखा जाए तो हम जो भी खट्टा मीठा अनुभव करते हैं वो ज्ञान के माध्यम से अनुभव करते हैं, वास्तव में तो हमारा अपना ज्ञान है जो खट्टे मीठे का हमें अनुभव देता है, नीम खट्टी है वो नीम कड़वी है ये तो है ही, लेकिन हमारे अंदर उसको ज्ञान में वैसा ही कहना चाहिए अनुभव करने की सामर्थ्य है, इसलिए जो है हम उसका वैसा अनुभव करते, तो दोनों ही सही है कि नीम भी कड़वी है और जब हमारे जिह्वा का वो विषय बनती है, ज्ञान का विषय बनती है तो हमें उसकी कड़वाहट का अनुभव होता है। तो जैसे दो चीजें हम आंख से देखते हैं या चेतना से देखते हैं, तो भैया हम आंख से भी देखते हैं क्योंकि आंख माध्यम बनती है, और वास्तव में तो हम अकेली आंख से थोड़ी देखते हैं। अच्छा देखो, जब चेतना निकल जाती शरीर में से तब आंख से दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो कोई कहे कि हम आंख से नहीं देखते, हम तो आत्मा से देखते हैं, तो फिर आंख बंद कर लो देखो, तो कहते ये भी मामला गड़बड़ है। तो कहते दोनों ही चीजें, आंख से भी देखते हैं और चेतना से भी देखते हैं दोनों आप, इसी तरह ये भी है। कृपया बताएं कि आपकी कविता सिद्ध नाम सत्य के भाव पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक समझाएं। ये मेरी कविता नहीं है भैया, ये गुना वाले एक वकील साहब हैं, उनकी है, मैं सिर्फ सुनाता हूँ। आप पैसा मत समझिए, कंफ्यूज मत करिए कि वो मेरी है, मैंने नहीं लिखी उसको, पर उसके भाव बहुत अच्छे लगते मुझे, इसलिए सुना देता हूँ कभी कभी। मंदिर जी की रक्षा हेतु या व्यवस्था हेतु बोलना चाहिए या नहीं? यदि व्यवस्था में कमी आ रही हो, या ये समझें कि जिसकी करनी जिसको करनी वो जानेगा, या जैसा करेगा वैसा भरेगा, ऐसा मानकर चुपचाप बैठें। भैया ऐसा है कि दो लोगों के अलग अलग काम हैं, साधु जनों के अलग काम हैं, श्रावक जनों के अलग काम हैं। तो अगर मंदिर में कोई अव्यवस्था होगी तो श्रावक का फर्ज है, वो अपना फर्ज करेगा। महाराज का फर्ज क्या है? इतना ही कि श्रावक को अपने कर्तव्य का उपदेश देना, बस। देखो श्रावक को अपने धर्मायतन की अच्छी सेवा करनी चाहिए, उसे अच्छे से बनाना चाहिए, उसमें भगवान को ठीक से विराजमान करनी चाहिए, जैसे प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है जैसा होना चाहिए वैसा। ये उपदेश देना ये तो काम है, लेकिन अपने हाथ से और हम कुछ करने लगें या कि किसी से करवाने लगें तो बात तो वही हो गई, स्वयं करना या दूसरे से करवाना कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा कहेंगे तो बताइएगा फिर क्या स्थिति बनेगी। तो हमने बलात् उससे जबरदस्ती जो है उसको ऐसा करवा दिया, तो उसका अपने जिम्मे भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, मानना चाहिए। देखो नहीं आएगा ऐसा नहीं कह सकते, आएगा तो, अब आप करते हैं ये बात अलग है, पर मानना तो पड़ेगा कि आएगा, उसका दोष तो अपने लिए आएगा, इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो फिर सबके लिए करना चाहिए वैसे ही कि खड़े हो जाओ, फुर्सत है, सबसे ज्यादा फुर्सत तो महाराज ही है, उनके जिम्मे सब सौंप दो, उनके जिम्मे ईंट ईंट गारा चूना को हिसाब सौंप दो, वे बनवाते खड़े रहे, अपन को फुर्सत ही नहीं है। श्रावक को, श्रावक का काम था भैया ये, हमारा नहीं, हमारा काम सिर्फ यह है कि उपदेश देना कि देखो अच्छा धर्म स्थल बनाना चाहिए जिससे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, मंदिर जाना चाहिए, जहां मंदिर नहीं है वहां पर बढ़िया से भव्य जिनालय बनाना चाहिए, ये उपदेश दे सकते हैं, इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं कह सकते हम, हमारी अपनी सीमाएं हैं भैया, इसलिए। और कोई ऐसा नहीं है कि हम उन चीजों का निषेध कर रहे हों, हम अपनी सीमा में रहें और श्रावक जो है उस चीज को करे तो बहुत अच्छा रहता, एक दूसरे के काम एक दूसरा करने लगे तो फिर कैसे काम बनेगा, अव्यवस्था नहीं फैलेगी। मैनेजिंग के कोर्सेज में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि जिसका जो काम है वो अपना उसको फुली डिवोट होकर के उस काम को करे, अगर दूसरे के काम में इंटरफियर करेगा तो ना वो कर पाएगा ना ये स्वयं ही कर पाएगा, काम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जनवरी में पीलिया हुआ, पूरे शरीर और आंखें पीली हो गई, दो महीने तक पीलापन नहीं गया, इसके बाद भी हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्या आप कोई समाधान दे पाएंगे? ठीक है आपने पूछा है, तो समाधान तो यही है कि जो भी रोग शोक व्याधि होती है उसका कारण क्या है, बाह्य कारण जो भी हो, लेकिन अंतरंग कारण तो हमारे असाता कर्मों का उदय ही होता है। हमें असाता कर्म के उदय से, वादिराज महाराज को असाता कर्म के उदय से कुष्ठ रोग हो गया, इतने बड़े मुनि महाराज थे, उधर समंतभद्र स्वामी को अपने असाता कर्म के उदय से भस्मक व्याधि हो गई, उन्होंने क्या उपाय करा? उन्होंने एक ही उपाय करा, भगवान की ठाट बाट से पूजा और भक्ति करी, और भगवान की भक्ति से हमारे परिणाम निर्मल होते हैं जिससे कि हमारे खोटे कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। एक ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है भैया, जो भी विपत्तियां जो भी हमारे शारीरिक बाधाएं आती हैं उन सब का एक ही कारण होता हमारे पूर्व संचित असाता कर्म, और उन्हीं को कम करने के लिए हमें पूजा पाठ धर्म ध्यान ये सब का आलंबन लेना चाहिए। इतना ही मैं आपको सलाह दे पाऊंगा। हम जब आठवीं कक्षा में पढ़ते थे तो हमारा एक दोस्त था, वो हमारे घर पढ़ने आया करता था, वो एग्जाम में मेरे से ज्यादा नंबर ना ला सके इसलिए मैं एग्जाम के दिन में उसकी नोटबुक छुपा दिया करता था जिससे वो पढ़ ना सके। आज मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है, इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, आधी गलती तो सुधर गई, स्वीकार कर लेने से आधी गलती सुधर जाती है, जब अपन ने एक तो आत्म साक्षी पूर्वक स्वीकार कर लिया और फिर आपने तो गुरु की साक्षी पूर्वक, देव की शास्त्री साक्षी पूर्वक और सबकी साक्षी पूर्वक स्वीकार कर लिया कि मेरी गलती है, बहुत कम असर हो गया उसका। अब थोड़ा सा इतना काम और करें कि वो जो अपन ने उस समय ज्ञानावरणी कर्म बांध लिया है, दूसरे के ज्ञान में बाधा डाली है, तो उसके लिए अपने उस कर्म को काटने के लिए अच्छा है कि आप कभी भी ऐसा ना करें, ऐसा संकल्प ले लें और किसी व्यक्ति को पुस्तक इत्यादि देकर के मदद करें या कि मंदिर जी में शास्त्र इत्यादि भेंट करें। कोई को पुस्तक नहीं खरीदने के पैसे नहीं हैं, उसे हम पैसे से मदद देकर के कि आप पढ़ो, हमसे तो उतना नहीं बनता पढ़ते, और हमें पुस्तक इत्यादि भेंट करने में मदद करना चाहिए और हमेशा ज्ञान की प्रशंसा करना चाहिए। जब भी कोई मिले तो उससे कहना कि कभी ऐसा मत करना, दूसरे के ज्ञान में बाधा नहीं डालना, उससे अपना ज्ञान ही घटता है, बढ़ता नहीं है कभी दूसरे के ज्ञान में बाधा डालने से। बहुत अच्छा है आपने स्वीकार किया इस चीज को, तो सबसे बड़ी चीज है। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि आचार्य श्री के दोनों शिष्यों शिक्षा दोनों की एक है, मतलब आचार्य श्री ने दोनों जन को शिक्षा एक दी, मेरा नाम लिखा। अच्छा, वर्तमान में दोनों बराबर आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं और कोई भी कार्य करते हैं उनके आशीर्वाद बिना नहीं करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ये दो महाराजों की, इसमें इन्होंने वही चार्ट बना के लिखा है, एक तरफ मेरा नाम लिखा है, एक तरफ हमारे और जो छोटे भाई हैं सुधा सागर जी, तो उनका नाम लिखा है, तो दोनों के बारे में लिखा है कि वो इस तरह करते हैं, ये इस तरह करते हैं। कृपया ये कहकर बात समाप्त ना करें कि मेरे को इसमें कोई मतलब नहीं है, मेरा तो सिर्फ कल्याण करना कि गुरु एक और जैन आगम के अनुसार शिक्षा एक, रास्ते अलग अलग। आचार्य श्री की मौजूदगी इसमें पर दोनों लेते हैं। कृपया विस्तार से आप मेरे से इस बारे में अलग से मिल लें तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं आपको एग्जैक्टली क्या स्थिति है ये बता सकता हूँ। आप कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों जन में, तो कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता, सब आदमी अपने अपने में यूनिक हैं। एक ही गुरु के शिष्य होने पर भी सबके अपने अपने धर्म प्रभावना करने के स्टाइल हैं, हाँ अपना अपना सोच है। कोई गुरु जी का नाम लेकर के अपने ढंग से काम कर सकता है और कोई गुरु का नाम लेकर के गुरु के ढंग से काम कर सकता है, दोनों ही चीजें हैं और दोनों ही मान्य हैं। इसलिए इससे ज्यादा और मैं और अधिक नहीं कहूंगा, मैं इस तरह के कंपैरिजन करने में विश्वास नहीं रखता। मैं तो ये सोचता हूं कि पता नहीं किसके माध्यम से किसका कल्याण होगा, आपका जिसके माध्यम से कल्याण हो जावे। भैया जो भी साधु बनता है वो अपने आत्म कल्याण के लिए बनता है, उसके संपर्क में जो आता है उसके प्रति भी वो उपकार ही करता है, उससे जितना बनता है वो अपने अपने ढंग से और दूसरे के भी कल्याण करने के लिए उपदेश देता है। जरूरी नहीं है कि जिन लोगों का मेरे से कल्याण नहीं हो उसका किसी और से नहीं होगा, और जरूरी नहीं है कि जिसका किसी और से नहीं हो उसका मेरे से नहीं होगा। पता नहीं, हम लोग तो सिर्फ इतना अहंकार कर लेते हैं कि जैसे हम ही लोगों का कल्याण करते हो। नहीं भैया, सब अपना अपना कल्याण करते हैं, एक दूसरे को निमित्त बना लेते हैं। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि ऐसा अहंकार कभी नहीं करना कि मेरे द्वारा किसी का कल्याण होगा। नहीं, पता नहीं किसकी कौन सी बात से और किसको दिशा मिल जाए, मुख्य बात वो है, बाकी सब बातें तो बहुत बाहरी हैं और बाहर ही छूट जानी है। श्रावक को तो अब जिससे ट्यूनिंग मिल जाए, देखो भैया सबका अपना, जिससे आपकी ट्यूनिंग मिल जाए आप उससे अपनी ट्यूनिंग मिला करके और अपना कल्याण कर लीजिएगा। हो सकता है कि मैं जो करता हूं वो कुछ लोगों को नहीं पसंद आता हो, और हो सकता है कि मैं जो करता हूं वो कुछ लोगों को पसंद आता हो, तो इसमें क्या चीज है, इसमें कोई कंपेयर करने की तो है ही नहीं। दो बेटे एक ही मां से पैदा हुए, दो ट्विंस, दोनों के अपने अपने विचार। एक मूंगफली खाता है तो दूसरों को भी खाना पड़ेगी क्या है? नहीं, वो तो तुम दोनों एक ही मां के बेटे हो इसलिए वो मूंगफली खाते, तुमने क्यों नहीं खाते तुम मूंगफली, और वो जो है वो यानी फिर तो त्याग कर ही नहीं पाएंगे। उनका अगर किसी रस का त्याग है तो फिर दूसरे को भी करना पड़ेगा, और दूसरे का रस का त्याग नहीं है तो इनको आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक सा होना चाहिए सब। बिल्कुल, आप जितनी स्पीड से चलते हैं उतना ही उनको भी चलना चाहिए, आप धीरे क्यों चलते हैं? ऐसे कैसे करेंगे आप, क्या इस तरह कंपेयर कर सकते हैं आप सब चीजों में? नहीं भैया, आत्मा प्रभावनीय, बाह्य प्रभावना और अंतरंग प्रभावना में से कौन किसको प्रायोरिटी देता है, ये सबकी अपनी स्टाइल है। पर दोनों तरह से धर्म प्रभावना का उपदेश आचार्य भगवंतों ने दिया है। कौन किसको प्रायोरिटी देगा ये उसके अपने नेचर पर डिपेंड करता है, इतना ही है। इसलिए ये जो आपने कंपैरिजन लिखा है मैं एक बार पढ़ तो लेते हूं, पढ़ के सुनाऊंगा तो नहीं। ठीक है, ये एनालिसिस तो आपका ठीक है, एनालिसिस तो आप ठीक कर रहे हैं। दोनों ठीक लिखा है इन्होंने, कहीं कोई भी ऐसी चीज नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप, आपका कंपैरिजन बहुत अच्छा है और दोनों तरह की प्रभावना, मेरा उत्तर ठीक है, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जो उत्तर दिया है वो ठीक दिया। आप इसी तरह से लें और अपने कल्याण के लिए निमित्त बनाएं, क्योंकि देव गुरु शास्त्र तो कल्याण के लिए निमित्त बन सकते हैं। आप बनाएंगे तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा। मैं सोच रहा था कि आप कोई वैसा कंपैरिजन नहीं, वैसा कंपैरिजन नहीं, वो कह रहे हैं कि आपकी स्टाइल ये है और महाराज की स्टाइल ये है, तो दोनों में कोई सिमिलरिटी जैसी नहीं मालूम पड़ती, लेकिन डिसिमिलरिटी भी नहीं है। ये भी चीज है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है, ये बहुत मुश्किल हो गया। अभी हम लोग ऊपर बैठे हुए आचार्य महाराज के बारे में बात कर रहे थे कि मैंने किस तरह से जो है वो यहाँ आज 25-27 वर्ष हो गए आचार्य महाराज को, उनका अपना स्टाइल ज्यों का त्यों, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं। और आज बाकी जगहों पर सब अपने अपने बहुत सारे चेंजेस हो गए, पर पहले हमने देखा है कि संडे का प्रवचन 50 लोगों में होता था, आज वही संडे का प्रवचन 25,000-50,000 लोगों में होता है, लेकिन आचार्य श्री ज्यों के त्यों, जैसा पहले करते थे वैसा ही आज करते हैं। ना उन्होंने कभी इस बात की चिंता करी कि क्यों 25 हैं और क्यों 50 नहीं है और क्यों 50,000 नहीं है। वही निष्प्रहता तब थी और वही निष्प्रहता आज भी है। तो हमें वास्तव में वो चीज अपने जीवन में लानी चाहिए कि क्या हम इतनी ही निष्प्रहता रख पाएंगे। मुख्य बात तो वही है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है तो उसे मृत्यु के बाद 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना पड़ता है, फिर उसे स्वर्ग नरक नसीब होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन सब बातों का अकाउंट कौन करता है, कौन प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ये हिसाब रखता है कि उसकी 83 लाख योनियां कंप्लीट हो चुकी हैं और उसे इस योनि में प्रवेश कराता है। अगर आपके अनुसार ये सब स्वचालित है, प्रकृति की व्यवस्था है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, कृपया थोड़ा बहुत बताने की कृपा करें। आंसर तो यही है जो आपने लिखा है, रूल्स आर रेगुलेटेड ऑन सेल्फ। कोई भी नियम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई बनाता है क्या, मिला करके पानी बनाना पड़ता है क्या, कोई प्रयत्न विशेष करना पड़ता है तब बनता है? नहीं, नेचुरल प्रोसीजर है। हमने उसके फॉर्मूला को जान लिया है तो हम उस प्रक्रिया के द्वारा उसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, सोल नॉन सोल, मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, टाइम एंड स्पेस, ये 6 चीजें हैं जिनसे मिलकर के सारा लोक बना हुआ और सेल्फ रेगुलेटेड है। सब अपने अपने अनुसार परिणमन करते हैं। धर्म धर्म का काम है मीडिया ऑफ मोशन। जब कोई जीव और पुद्गल चलना चाहे तो उसके चलने में मीडिया बन जाता है, रुकना चाहे तो रुकने में मीडिया बनने के लिए एक द्रव्य है। उसको करना क्या है, उसकी प्रेजेंस अपने आप में और सारी चीजों को कराती रहती। हम जिस तरह के भाव करते हैं वो हमारे भीतर फीड हो जाते हैं, फिर जब उनका फ्रूटेशन होता है तो हमें वैसा ही फल भोगना पड़ता। हम आम का पेड़ लगाते हैं, उसमें फिर क्या अलग से हमें आम लगाना पड़ते क्या उसमें? नहीं, जब हम आम का पेड़ लगाते हैं तो अपने आप जब वो बड़ा होता है और उसमें फल लगने लगते तो आम के ही फल लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते? किसने गिने, किसने इतने ही लगाना थे 50 उगेंगे, ये किसने तय किया? और ये वाला आम पहले पकेगा, ये वाला आम बाद में पकेगा, ये पकने के बाद नीचे जल्दी से गिर जाएगा, वो नहीं गिरेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ऐसा सोचो, नहीं, वो अपने आप ही ये प्रोसीजर है, कोई वहां पर बैठा हुआ नहीं है जो कि इन सब चीजों को उगा रहा है, उनको मैनेज कर रहा है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें होती रहती हैं, ऐसा मानना चाहिए भैया। मैं इससे और ज्यादा डिटेल मैं क्या बताऊं, इतना ही, इतने में आप समझ जाएं तो बहुत अच्छा है। जैन धर्म में वीतराग प्रतिमा के अतिरिक्त और भी धर्म की उपासना का निषेध माना गया है। निषेध तो इस तरह से नहीं किया जिस तरह से अपन लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। हमारे यहां पर यह कहा गया जैसे कि चार रास्ते हैं, मुझे किसी एक रास्ते पर चलना है तो बाकी तीन रास्तों के बारे में अपने आप निषेध हो गया। जब मैं अपने अपने रास्ते पर चलने लगा तो बाकी तीन की क्या जरूरत रही। जब मैंने मान लिया कि वीतरागता ही मेरे लिए पूज्य है तो बाकी सब चीजें अपने आप ही निषिद्ध हो गई। बताइए, पांच चीजें खाने के लिए रखी थी, मैंने कहा मैं तो एक ही खाऊंगा, मेरा पेट उसी में भर जाएगा, तो चार चीजें नहीं खाऊंगा, बात खत्म हो गई। इस तरह यदि हम देखें तो कहीं कोई भी कहना चाहिए डिस्प्यूट नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। जिसको जैसी श्रद्धा है, जिसका जैसा ज्ञान है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, वो अपने अनुसार उस चीज को करता है। मुझे वीतरागता में आनंद आता है, मैं उसको भगवान मानता हूं। कोई रागी को भगवान मानता तो माने, हमारा उसमें क्या, क्यों हम उसको कहेंगे कि नहीं आपको नहीं मानना चाहिए। सब यहां पर अपने अपने विचार के लिए स्वतंत्र है। अब मुझे फिर से जिन वाणी पढ़ना पड़ेगी आपसे पढ़ लूंगा, मुझे क्या दिखा? हमारे यहां तो आचार्य भगवंतों ने यही कहा है कि जब भी प्ररूपण करो तो इस तरह से प्ररूपण करो कि जिससे किसी को क्षोभ उत्पन्न ना हो। लिखा तो सब कुछ है लेकिन जब बोला जाएगा तब वैसा ही बोला जाएगा, हित मित और प्रिय, भाषा समिति पूर्वक ही बोलना पड़ेगा। सत्य धर्म का पालन उनके सामने होता है जो कि हमारे अपने विचार के हैं। नाना विचार के लोगों के सामने भाषा समिति और अपने ही विचार के लोगों के सामने सत्य धर्म, मुझे इस बात का ध्यान है। हाँ, भाषा समिति का उपयोग तो मुझे करना है, ग्रंथों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं तो उतनी ही बात कहूंगा जितनी की मुझे सिखाई गई है। इससे ज्यादा मैं और सीखा ही नहीं हूं, जितना उतना ही सीखा हूं मैं। अब मैं आपसे और क्या कहूंगा इससे ज्यादा, जितना मुझे जैसा कहा गया, क्योंकि मुझे जरा सी बात, एक एक मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया था, भावांजलि की जगह पर श्रद्धांजलि शब्द निकल गया था मेरे मुंह से, उसका मुझे आचार्य महाराज ने प्रायश्चित दिया। क्या था, मैंने स्वयं निवेदन किया था जब उन्होंने कहा कि आज तुम्हें याद है कि कहां चूक गए, तो मुझे तो बोलने के बाद ही समझ में आ गया था, तो जाकर के कहा कि हाँ भगवान मुझे याद है कि मैं, मुझे जहां भावांजलि बोलना थी वहां श्रद्धांजलि बोल गया था। तो फिर क्या करना है, फिर कोई प्रायश्चित दे करके शुद्ध करें। इसलिए भैया, जिससे कि किसी को क्षोभ उत्पन्न हो जाए, किसी को पीड़ा पहुंच जाए, ऐसे परबदकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे, ये तो श्रावक के लिए लिखा हुआ है, श्रावक के लिए, पर बदकार कठोर निंद नहीं बचे, और अपने साधु के लिए तो हित मित और प्रिय, इतना ही। तो जब मैं तो ऐसे ही इंटरप्रिटेशन करूंगा कि हमने अगर वीतरागता को भगवान माना है तो हम वीतरागी को पूजेंगे, बाकी से हमें ना उनकी निंदा करनी है ना उनकी प्रशंसा करनी है, वास्तव में तो ये है। लेकिन हम जिसको मानते हैं उसको ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दूसरे को इन्फीरियर मानते हैं, ये ठीक नहीं है। यहां हम चूक जाते हैं, हम अपने को श्रेष्ठ माने ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दूसरे की लकीर मिटा करके अपनी बड़ी करना, ये तो हमारे यहां कहीं नहीं सिखाया गया। दूसरे का निषेध करके और अपने को ठीक बताना, ये हमारे यहां पर इंटरप्रिटेशन का ये ढंग नहीं। मेरा ये मानना है कि जीवन के उद्देश्य की पूर्ति वीतरागी भगवान को अपना ईश मानकर ही हो सकती है, ठीक है, किंतु जीवन में उन वीतरागी भगवान जैसा बनने के लिए समर्पण भाव अत्यंत जरूरी, ये भी बिल्कुल ठीक है। यदि अन्य कोई व्यक्ति ईश्वर को प्रणाम, अन्य किसी धर्म
कि ईश्वर को प्रणाम करने से हमें समर्पण भाव उत्पन्न होता है, तो फिर हमें प्रणाम करना क्या गलत होगा? प्रणाम वंदना तो हम घर से, घर में बड़ों की भी करते हैं, आप गुरुजनों की भी करते हैं, फिर उनके लिए एकदम रोका क्यों जाता है? मैंने इसीलिए कहा कि इंटरप्रिटेशन अगर ठीक नहीं होगा तो ये प्रश्न उठेगा, लेकिन मैंने जो पहले बात कही उससे तो कहीं कोई ये प्रश्न ही बाद में नहीं उठेगा। आप किसे किस दृष्टि से प्रणाम करते हैं? मैंने प्रणाम किया, आपने क्या सोचा आपको किया? बोलो, मैं कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। तो मैं किस दृष्टि से प्रणाम कर रहा हूं ये मेरे अपने भावों पर निर्भर है। मैं वीतरागी भगवान के सामने भी हाथ जोड़े रहूं और मेरे दिमाग में कोई और चीज रहे तो क्या होगा? जो दिमाग में है वो उसी को प्रणाम। मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं, जो भी लोग करते हैं माता पिता को प्रणाम करते हैं तो उनमें क्या मान के करते हैं? उनके गुणों को प्रणाम करते हैं ना। हमारे यहां पर प्रणाम जब भी किया जाता है तो गुणवत्ता को प्रणाम किया जाता है। हम बाहर के रूप रंग और इन सब चीजों को प्रणाम नहीं करते, हम बाहर मूर्ति को प्रणाम नहीं करते, मूर्ति में बैठे हुए मूर्तिमान को प्रणाम करते हैं। और वो मूर्तिमान इसलिए पूज्य है क्योंकि उसमें गुण है। संबंतभद्र स्वामी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि देवागमन भोयान चामराती विभूतया माया विश्व भी दर्शनते ना अस्ति तुमसिनो बहान। अरे देव लोग चले आ रहे हैं और बड़ा भव्य समोषण लगा हुआ है, क्या इसकी वजह से आप महान हो गए इसलिए मैं आपको प्रणाम करूं? अरे ऐसा तो इंद्र जालिया भी बना सकता, ऐसा भगवान से कहते हैं। तो भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं तो कर तो रहे हो तुम प्रणाम, क्यों कर रहे बताओ? अगर इस वजह से नहीं कर रहे तो फिर बड़े ठाट से कहते हैं कि दोषावरण योर हानिर, आप हमारे जैसे जन्म मरण रोग शोक व्याधि इन 18 दोषों से रहते हैं, परम वीतरागी हैं, सर्वहितोपदेशी हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करें। हमने उस गुणवत्ता को प्रणाम किया है, इसलिए भैया जहां भी जब हम गुणवत्ता को प्रणाम करते हैं तो ये भाव ही नहीं, ये प्रश्न ही नहीं आएगा। अब आप गुण किसको मानते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फिर भी कहूंगा, पता नहीं आपको, आप किसको गुण मानते हैं। हमारे हम वीतरागता को गुण मानते हैं, हो सकता है कि आप रागद्वेष को भी गुण मानते हो, तो आप उसको प्रणाम करिए, आपकी अपनी चॉइस, हम उसमें क्या कहेंगे। महाराज बताएं कि प्रातःकाल जब घर में हम सफाई करते हैं, काफी प्रयास करने पर चींटियां मर जाती हैं, एक एक चींटी को बजाने का प्रयास करें तो काफी समय लग जाता, सुबह काफी काम करना होता है और उस सब के लिए हम बहुत हैबिचुअल हो गए। नहीं ठीक है, वे बहुत बहुत प्रैक्टिकली चीज है, मुझे इस तरह के प्रश्न में मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है। किताब के प्रश्न तो दुनिया पूछती है, किताब में लिखे हैं सो मेरे पास से ले जाना, सो पढ़ लेना उसमें से, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में जो बातें हमारे हम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, उनमें तो उनमें हम क्या कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, एक सूत्र अपने जीवन में हर गृहस्थ को अपने यहां पर लिख करके रखना चाहिए। मैं इस तरह से अपनी गृहस्थी को रखूं जिससे कि कम से कम अल्प जीव राशि उत्पन्न हो, मैं इस तरह से साफ सफाई रखूं कि जीव राशि उत्पन्न ही ना हो, जब उत्पन्न होगी तो फिर मेरे द्वारा वो मरेगी और उसका पाप मुझे भोगना पड़े। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बाद में हम उसका उपाय करें इससे बेहतर है कि पहले क्यों। हमारे यहां पर हमेशा इस बात का, शावक के जीवन में तो हिंसा कदम कदम पर है, कदम कदम पर, लेकिन उसके बावजूद भी वो अहिंसक कहला सकता है, सिर्फ कितना कर ले, संकल्पी हिंसा नहीं करूंगा, इरादा करके इंटेंशनली किसी को पीड़ा पहुंचाने का भाव भी नहीं करूंगा, ऐसी क्रिया भी नहीं करूंगा इंटेंशनली कि ये सब चीटियां हमारे यहां पर हो जाती, सांप तो अलग, ऐसा नहीं, सबको मारूं नहीं, मैं तो पूरी बचाने की कोशिश करूं, इसके बाद भी मर जाएंगी मैं जानता हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है उनको बचाने की, बस इतना ही कर सकते हैं घर गृहस्थी में। मारने के लिए बिना प्रयोजन के और इंटेंशन के साथ इतना भरम त्याग कर दें तब भी है, और सावधानी पूर्वक काम करें तो अच्छा रहे। महाराज जयपुर में चाहे चौमासा चाहे कहीं भी करें, लेकिन जहां पर भी कहें करें वो स्थान भीड़ भाड़ वाला ना हो। अरे वाह, शांति से अच्छे से हो जाए, अच्छी बात। जयपुर का सेंट्रल प्लेस हो तो काफी लोग आप ही अमृतवाणी से लाभान्वित हो जाएं। अगर हो सके तो चौराहा शहर में ना करें क्योंकि भीड़ भाड़ और पार्किंग की समस्या बहुत रहेगी। वाह, ये कह रहे हैं, मतलब उनको अपनी भीड़ भाड़ से मुश्किल है कि हमें निकलने नहीं मिलेगा और हमें अपनी पार्किंग नहीं करना पड़ेगी। यदि आपका चतुर्मास, आप देखना लास्ट में, यदि आपका चतुर्मास महावीर नगर में हो जाए तो बहुत अच्छा। बात ये है उनकी वो तो सभी, मतलब यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं, यहाँ पर पार्किंग की सब पहले सब असुविधाएं रख दी और फिर उसके बाद ये सब सुविधाएं, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता कि देखिए ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, जो भी हो, भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सभी चीजें अच्छी हैं भैया। अपना मन अच्छा हो तो सब अच्छा होता है, कहीं भी रहो। आचार्य महाराज कहते हैं कि चाहे अकेले में रहो, चाहे भीड़ में रहो, अपने में रहने की कोशिश करना, नहीं तो ना अकेले में रहना और ना भीड़ में रहना, दोनों ही काम नहीं आ पाएंगे। अपने में रहना, जहां भी रहो, सबके लिए यही मैसेज है। ये सब चीजें बाहर की देखेंगे, ध्यान इन सब का भी रखेंगे, और भी चीजों का ध्यान रखना है हमें। मुख्य रूप से तीन चीजों का ध्यान रखना होता है, अपने स्वास्थ्य, क्योंकि उसके बिना धर्म ध्यान नहीं होता, शरीर का भी ख्याल रखना पड़ेगा, साधना जहां पर आसानी से हो, और स्वाध्याय हो। तीन बातें मुख्य हैं, उनकी मुख्यता है, बाकी फिर सबका कल्याण, वो तो अपने आप हमारे अपने कल्याण में ही सबका कल्याण निहित है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, और जिस आचार्य महाराज से सारी बातों का डिस्कशन करने के बाद ही कोई डिसीजन वो जो होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अभी तो मुझे आप जानना चाह रहे हैं कि कल क्या आदेश मिला है, अभी तो मैंने डिक्लेयर तक नहीं किया है, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी मुझे इस बात का पहले विचार कर लेना है कि जहां राग द्वेष कम होगा, सबसे पहले यदि राग द्वेष कम होता है तो मेरे लिए अल्टरनेट भी है, वो मेरे अपने ऊपर निर्भर है कि अगर आपको ऐसा लगे कि राग द्वेष अधिक है तो फौरन सूचित करें और आप मूव करें दूसरी जगह। हाँ, इसलिए पहली प्रायोरिटी है कि मुझे अपना धर्म ध्यान करने में जहां पर आसानी होगी, मेरा स्वाध्याय आसानी से हो, मेरी साधना हो सके और साथ में स्वास्थ्य की रक्षा भी हो, सबका तो कल्याण हो ही, लेकिन मुख्य चीज क्या है। आचार्य महाराज हमेशा इन्हीं तीन बातों को ध्यान में रख करके और स्थान चूज करने के लिए कहते हैं, तो हम उस चीज का ध्यान रखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत आसान लगता है पर इतना आसान है नहीं, फिर भी आपकी भावनाएं आप बनाए रखिएगा। अभी मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, अभी मैंने कोई डिग्री नहीं किया। अभी अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी ये बताइएगा पारसनाथ की पंक्तियों के बारे में, ये तो बड़ा स्तोत्र देख करके मुझे बताना पड़ेगा, इन्होंने जो है जो जो चीजें इसमें लिखी हैं मैं इसको रख ले रहा हूँ, लाइनें भी लिखी हैं, स्तोत्र की संख्या भी लिखी है, तो उनमें मैं देख करके बताऊंगा। अच्छा, अरे प्रमेय रत्माला का छंद इतना इस प्रकार वर्णित है, ये तो समझ में आने वाली चीज है। मैं सोच रहा था कि उसमें से प्रश्न किम गुरुताया मूलम, उत्तर यथा इदम प्रार्थनम नाम, प्रश्न किम लाघनम, उत्तर यांचा। अच्छा, पार्श्वनाथ स्त्रोत में चौथा दोहा इस प्रकार है, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, महासंकटों से निवारे विधा निकारे विधाता, सबे संपदा सर्व को दे हिदा। जैन दर्शन में पर को एक दूसरे का कर्ता ही स्वीकार नहीं किया, और प्रभु से किसी प्रकार की याचना करने को तो मिथ्यात माना है। ये प्रश्न तो ये है इनका, एक्चुअली हमारे यहां पर भक्ति का कॉन्सेप्ट जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आप थोड़ा सा ब्रॉड होकर के थोड़ा सोच लीजिएगा, दो लाइनें हैं उन पर अपन विचार करें। मोरी तो से बनी ताते करत पुकार, ठीक है ना, भगवान मेरा काम तो आपसे होने वाला है, आप ही करोगे और आप ही को सब करना है, एक ये भी बोलते हैं, और एक लाइन ये भी बोलते हैं उसी के साथ में कि मुझ कारज के कारण सुहा। दोनों को हम समन्वय करके चलते हैं। एक तरफ जब हम स्तुति करते हैं तो भगवान को ही सब कुछ मान करके और अपने को समर्पित करके श्रद्धा की भाषा में बोलते हैं कि जो कुछ भी होगा आपकी कृपा के बिना नहीं होगा। जब हम भगवान की कृपा मानते हैं तो मानिएगा वहां भी हमारे भीतर यही ध्यान रहता है कि भगवान नहीं करेंगे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार ना आ जाए। इस अहंकार को तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप ही ने किया, मैं क्या कर सकता था। वास्तव में बात यह थी, विनोबा की मां जब दही जमाती थी तो भगवान का नाम लेती, तो विनोबा जब थोड़े बड़े हो गए तो उनने कहा मां दही काय से जमता है, जिस तरह जमाया जाता वैसे ही जमता है ना। हाँ वैसे ही जमता, तो फिर बीच में भगवान जी की क्या जरूरत, नाम काय को लेती, क्या भगवान जी जमाते हैं क्या आकर के। अच्छा जमाते हैं अगर, तो दूध को ऐसे ही जमा देना चाहिए उनको दही, हम उसमें कोई प्रक्रिया नहीं करें और जम जाना चाहिए। तो माने क्या जवाब दिया, बेटे मैं दही जमाती हूं ये अहंकार ना आ जावे, इस अहंकार से बचने के लिए मैं भगवान का नाम ले लेती हूं कि मैं कौन होती हूं, ये तो अपना द्रव का जैसा परिणमन है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, बाकी तो जैसी योग्यता है वैसा परिणमन होता मेरे भीतर, यही भाव। तो हमारी भक्ति के भीतर भी यही भाव, तब तो हम क्लियर करते हैं, भगवान से भी क्लियर करते कि भगवान धोखे में न रही हो कि तुम कर रहे हैं माओ काम, मुझ कारज के कारण सुआ, कारी तो मेरे भीतर होगा, कारण आप बनोगे, सिर्फ इतना ही है। लेकिन आपके बिना, आपके निमित्त के बिना, मेरे उपादान में योग्यता होते हुए भी मेरा कार्य नहीं होगा, इसलिए मैं निमित्त को कभी मुक्त करके कहता हूं कि आप ही ने किया, और अहंकार से बचने के लिए, और वास्तव में तो मैं जानता हूं कि मेरे उपादान के अनुरूप ही कारी होने वाला है। कितने लोग हैं भगवान के दर्शन करते हैं भैया, जिसके अंदर जैसी क्षमता है वैसा ही, कितने बच्चे हैं एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही गुरुजी पढ़ाते हैं, लेकिन कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई थर्ड डिवीजन आता है, कोई गोल्ड मेडल भी ले लेता है। क्यों? जिसका जितना योग्यता होगी उस निमित्त के माध्यम से उतना ही करे। तो अपने यहां पर भक्ति इसी उद्देश्य से की जाती भैया। ऊपर के दो प्रश्न जो प्रमेय रत्नमाला के हैं वो मैं फिर आपको उसमें से देख करके ही बताऊंगा, वो प्रश्नोत्तर रत्नमाला ये भैया जी पढ़ाते हैं ना शाम को, तो ये मेरे ख्याल से उन्हीं के से क्लियर करवाइएगा प्रश्न, भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ की उत्पत्ति किस स्थान पर और किस दिन हुई। इतिहास में तो हम बहुत कच्चे हैं, ये हमको नहीं मालूम। भगवान महावीर स्वामी को प्रीदत्त चक्रवर्ती के भाव में बैराग का कारण क्या था, ये भी नहीं मालूम। फेल, दो क्वेश्चन जीरो जीरो मिलेगा दोनों में। संगी पंचेंद्री की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, संगी पंचेंद्री की उत्कृष्ट आयु रहेगी 33 सागर, देवों की अपेक्षा से 33 सागर। संगी पंचेंद्री, अगर आपने संगी पंचेंद्री मनुष्य कह दिया होता तो 3 पल भोग भूमि वाले मनुष्य की 3 पल की उत्कृष्ट आयु होती, और अगर आपने संगी पंचेंद्री त्रेंच कह दिया होता तब भी 3 पल। हाँ आपने सिर्फ संगी पंचेंद्री कॉमन लिखा है तो वो तो 33 सागर ही होगी। संस्कार शिविर में आप, संस्कार शिविर में क्या लिख रहे हैं आप, माँ लोगों को या बहनों को परमिशन क्यों नहीं दी जाती है संस्कार शिविर में, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है भैया, कैसा चाह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं संस्कार शिविर, तो उसमें क्या करेंगे इस, ये कौन सा वाला शिविर है, संस्कार शिविर नहीं है। अच्छा वो तो, वो उसकी स्टाइल क्या है, किस तरह से करते हैं, मैनेज करना पड़ता है उसमें, व्यवस्था बहुत करनी पड़ती है ना, सुबह से शाम तक आपको पूरे कंट्रोल में रखना पड़ेगा, आपको अपना घर छोड़ करके एक जगह रखने के लिए पूरी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, और इसलिए शायद वो व्यवस्था ना बन पाने की वजह से आप ये मत सोचिएगा कि माँ लोगों को बहुत इन्फीरियर माना जा रहा है इसलिए उनके लिए क्यों नहीं रखा। अच्छा अगर देखा जाए तो वो लोग तो वैसे भी फोकट में धर्म करते रहते बहुत, उनको और ज्यादा धर्म करने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसा उत्तर अपन ले ले तो भी इन्फीरियर नहीं मानिएगा, शायद व्यवस्था की दृष्टि से। सुबह से शाम तक हमें व्यवस्थाएं देना पड़ेंगी, उसमें बहुत बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, तो शायद इस वजह से ना शामिल करते हों, सिर्फ जो है भाई लोगों को और उनको संस्कारित करने का होता हो, शायद यही रहा होगा संस्कार शिविर के मायने, वो सुबह से शाम तक जो ठीक उसमें धर्म की शिक्षा भी देते हैं, पूजा अभिषेक सब सब कुछ, भोजन इत्यादि सब आपका सब व्यवस्था करेंगे। वैसा भगवान का अभिषेक हो रहा है, जब हम खड़े रहना चाहिए या कि अभिषेक देख करके बैठ जाना चाहिए, कृपया बताइएगा। अब बताओ सब चीजें एक 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 चीज अपने विवेक से भी तो कुछ करो भैया। भगवान का अभिषेक देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं, फिर अपन ने देख लिया अब बैठ जाएंगे, उसमें तो बहुत कॉमन सी बात है। अब जब तक चलता रहेगा तब तक हमको अपनी पूजा भी करनी है, तो शुरू हुआ हमने देखा और अपना कर पूजा शुरू कर दी। शायद इसी वजह से पूछ रहे होंगे कि अब उतनी देर तक अभिषेक होता रहेगा तो हम खड़े रहेंगे क्या, नहीं उतनी देर अपन ने विनय कर ली। मुख्य बात तो जो है विनय की। वेदक सम्यक दृष्टि और शायक सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है, लोग कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, दो तीन बार ये प्रश्न आ गया है, शायद अलग अलग लोगों को कंफ्यूजन है। ये वेदक सम्यक दर्शन उसे कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी है, जिसमें कि सम्यक प्रकृति का उदय और अन्य छह प्रकृतियों का क्षय और उपशम दोनों की मिली जुली अवस्था होती है, वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन या वेदक सम्यक दर्शन कहलाता भैया, जिसमें कि हम अनुभव करते हैं सम्यक प्रकृति को उदय में चलमल अगाध ये दोष लगते हैं, वो वेदक सम्यक दर्शन हो। छायक सम्यक दर्शन में तो सातों प्रकृति अनंतानवंदी की चार और मिथ्यात् की तीन, इन सातों का क्षय हो जाता है, सत्ता से उनका अभाव ही हो जाता है, जबकि वेदक सम्यक दर्शन में सारी चीजें सत्ता में रहती हैं, उदयाभावी क्षय और सदवस्था और उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय, इनकी सबकी मिली जुली अवस्था का नाम वेदक सम्यक दर्शन या क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। सबके समझ में तो आएगा नहीं, वो तो जिनने पूछा है उनके समझ में आना चाहिए और बाकी थी, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, सबके समझ में कैसे, थोड़ा सा अध्याय किया होगा तो समझ में आएगा। सिद्धों के आठ गुण कौन से होते हैं, सम्मत नान दंशन वीरी सुमम तहेव अवगहनम अगुरु लघु अब्बावाहम अट्ठ गुणा होती सिद्धानम, रोज पढ़ते हैं सिद्ध भक्ति करते हैं तो ये उनके आठ कर्मों के अभाव में आठ गुण उत्पन्न हो जाते हैं, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर अगुरु लघुत्व अव्यावाधत्व और सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व, ये आठ गुण जो है वो सिद्ध भगवान के होते हैं। किस द्रव की जो पर जिस द्रव की जो परिणति है उसे उसी का कहना क्या व्यवहार नय है, या उसे अन्य द्रव की कहने वाला निश्चय नय, उल्टा कर दिया आपने मामला, किया तो है नए पद्धति को लेकिन उल्टा कर, जिस द्रव की जो परिणति है उसे ठीक वैसा ही कहना ये निश्चय है, और संयोगी अवस्था की परिणति को अन्य द्रव के साथ मिलकर के जो परिणति हुई है उसको उसको ज्यों का त्यों कहना वो व्यवहार में है। अभ्युदय और निश्चयस सुख में अंतर क्या है, अभ्युदय सुख तो जो है स्वर्ग सुख है और निश्चयस मतलब मोक्ष का सुख, एक में है पांच इंद्रियों का सुख दूसरे में है आत्म सुख, दोनों में इतना ही अंतर। संगी पंचेंद्रीय की उत्कृष्ट आयु ये भी हो गया, अरे वाह। जीव के स्वभाव और प्रभाव क्या होते हैं, जैसे कि राग द्वेष करते हैं अपन ये विभाव है, और जब अपन शांत अपने आत्मा में लीन होते हैं वो हमारा स्वभाव है, क्रोध करना हमारा विभाव है और क्षमा भाव धारण करना हमारा स्वभाव है। बस जब हम माला फेरते हैं तो 9, 18 ऐसा 108 ऐसे ही क्यों करते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मालूम, 9, इससे बड़ी बताओ, एक और शून्य, एक और एक, एक और दो, वही सब रिपीट हो गए कि नहीं हो गए, अगर देखा जाए तो हम उस बड़ी संख्या को ही मान करके कम से कम 9 बार नमो का एक प्रयोग हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि अगर ठीक ढंग से 9 बार नमोकार मंत्र जितने समय में पढ़ा जाना चाहिए उतने समय में पढ़ें तभी कर्मों की निर्जरा शुरू होती, तभी मन में शांति आना शुरू होती, और इसके पढ़ने का स्टाइल क्या है उस तरह पढ़ें, और उसमें जितना एक एक आर्या छंद पढ़ने में जितना समय लगता है उससे 9 गुने समय में वह, क्योंकि ये जो नमोकार है वो आर्या छंद है, ये नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो अच्छायाणम नमो लोये सौवसाहूणम, आर्य छंद, ये छंद की अपनी पढ़ने की पद्धति है। एक इतना छंद पढ़ने में जितना समय लगता है उससे 9 गुना समय जब हम पढ़ेंगे तभी हमारे परिणाम शांत होना शुरू होंगे। तो फिर एक कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र, या कि इसको 27 श्वासोच्छ्वास पर करेंगे उसमें जितना समय लगेगा उतने समय के लिए शरीर से ममत्व छोड़ना, ये कायोत्सर्ग। तो एक 9 बार नमोकार पढ़ने का ही एक कायोत्सर्ग, फिर 2 कायोत्सर्ग तो 18 हो जाएंगे, 3 कायोत्सर्ग तो 27 हो जाएंगे, 4 कायोत्सर्ग, ऐसे करके जो है संख्या बढ़ती जाती है और अधिकतम अपन 108 कर लेते हैं। उसमें भी टोटल देखें तो 1 और 8 प्लस 9 ही आएगा। 9 को जितनी बार मल्टीपल करेंगे 9 ही आएगा। 9 प्लस 9 18, 9 इंटू 3 27, 36 45 54, फिर 63 71 72, हैं ये सिर्फ बढ़ते जा रहे, 81 90 99, सब में 9 एटर्नल है। 9 संख्या जो है वो शाश्वत इसीलिए मानी गई कि इसमें इसको कितनी भी बार मल्टीपल, एक व्यक्ति ने तो बहुत अच्छा इसके ध्यान आ गया मुझे कि जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए, जैसे कि किसी के भीतर 9 बुराइयां हैं, 9 वर्ष के हुए तो 18 के हो जाएं तो 1 अच्छाई और 8 बुराई, 27 के हो जाएं तो 2 अच्छाई 7 बुराई, कम होती चली जानी चाहिए, है ना। फिर एक स्थिति आएगी कि 5 4, फिर जैसे 54 के हों तो 5 अच्छाई 4 बुराई, और 81 के हो गए 90 साल के होने पर तो बुराइयां 0 और गुण ही गुण रहना चाहिए, लेकिन उम्र बढ़ती जाती है तो उल्टा मामला होता चला जाता है। किसी ने ऐसा भी घटाया था मजे का, इसलिए ये 9 संख्या जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपन लोग 9 का इसी तरह उपयोग करते हैं। लेश्य किसे कहते हैं? भाव दशा का नाम लेश्य, कलरेशन ऑफ थॉट्स, कलरेशन ऑफ बॉडी वो भी लेश्य है, और कलरेशन ऑफ थॉट्स हमारे अपने भावों का रंग, जैसे अपन कहते ना कि भैया जी कपड़ा तो सफेद पहने लेकिन भीतर बड़ा काला है इनका, ऐसा मतलब क्या? कृष्ण लेश्य, नील लेश्य, कापोत लेश्य, पीत पद्म और शुक्ल लेश्य, ऐसी 6 लेश्याएं हैं, वो हमारी भाव दशा है। उसमें सबके लक्षण लिखे हैं कि ऐसा अगर हमारे परिणाम है तो कृष्ण लेश्य के परिणाम, अगर ऐसे परिणाम है जैसे कि बहुत अत्यंत प्रचंड कोप क्रोध के परिणाम है तो कृष्ण लेश्य के, दूसरे के साथ छल कपट करने के परिणाम है तो कापोत लेश्य के, सौरव फील करना आलसी होना ये नील लेश्य के परिणाम, अपने कल्याण के लिए चिंतित होना पीत लेश्य के, अपने और दूसरे के कल्याण के लिए चिंतित होना कृष्ण लेश्य के परिणाम, धर्म ध्यान में लगे रहना पद्म लेश्य के परिणाम, ऐसे करके बहुत सारी मैंने ये एक तरह का क्राइटेरिया है अपने परिणामों को कहना चाहिए मेजर करने का। तो लेश्य अपनी भाव दशा, संस्कृत में इसकी परिभाषा क्या है? कषायानुरंजित योग प्रवर्तित लेश्य, कषाय के साथ जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है उससे जो हमारे अंदर भाव दशा निर्मित होती उसे हम लेश्य बोलते हैं। ये टेक्निकल शब्द है जैन धर्म का, कहीं भी इसका इस तरह से लेश्य के मायने होता लश्चर, कॉमन डिक्शनरी में आप देखें तो लेश्य के मायने होता लश्चर, लेकिन हमारे यहां पर लश्चर नहीं लिया, हमारे यहां तो कलरेशन ऑफ थॉट्स लिया है, या कि बॉडी का कलर। हम लोगों का जो शरीर का रंग है वही भीतर का नहीं है, देवों का ऐसा है कि जो शरीर का रंग है वही भीतर का भी है, वही लेश्य भीतर की भी है, जैसे ऐसे ही नारकियों में भी, सिर्फ मनुष्य तिरंज में है कि ये अलग अलग होती हैं, द्रव लेश्य और भाव लेश्य दोनों। मुनि महाराज शुद्धि के पश्चात जब आहार के लिए प्रस्थान करते हैं तो जो नियम लेकर आते हैं वो क्या लिखा, वो नहीं समझ में आ रहा, से नहीं बैठे वो हाथ हटा ले तो पुनः, अच्छा विधि नहीं संयोग, ठीक वह संयोग से नहीं बैठे और फिर उन्होंने अंजलि छोड़ दी तो पुनः विधि लेकर के उस रोज जा सकते कि नहीं? नहीं जा सकते। एक बार एक बेला में चर्या के लिए निकल गए और विधि नहीं मिली तो आगे चुपचाप बैठ जाओ, अब दूसरी बेला में उस दिन अब आप आहार नहीं लेंगे, ठीक है? पूछ दिया, विधि नहीं मिली तो नहीं मिली। अब ऐसा नहीं है कि अभी सुबह के टाइम में गए थे विधि नहीं मिली तो अब दोपहर में सामायिक करके फिर से उठ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। ये दो बार वाला मामला नहीं। अगर प्रवचन में शंका समाधान में हम आए और हमारे यहां आने से घर में अशांति हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर घर वाले लोगों को हमारा यहां आना अच्छा ना लगे तो हम अपने जीवन की श्रेष्ठता के लिए हम क्या करें? भैया बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए, सब लोग संतुष्ट हों, सब लोग एक विचार के हों, हमें ऐसा पुण्य भी कमाना चाहिए, जिससे कि जिससे कि क्षोभ उत्पन्न हो। और दूसरी चीज ये है कि हम घर गृहस्थी के कामों में कोताही ना करें, हम उन्हें निश्चिंत कर दें कि हमारे मंदिर धर्म ध्यान करने से गृहस्थी के किसी कार्य में किसी को कोई बाधा नहीं आएगी, हम सब का सब काम भी कर देंगे और हम अपना धर्म ध्यान भी कर लेंगे। या तो ऐसा एडजस्ट, जब हम मंदिर बहुत जाने लगे थे तो सबको ये लगता था कि अब तो लड़का पढ़ने में कच्चा हो जाएगा, तो कितनी जिम्मेदारी हो जाती थी कि अब अगर मंदिर में 3 घंटे मैंने लगाए हैं, सुबह 1.5 घंटे, शाम को 1.5 घंटे, तो फिर मुझे कहीं से भी अपने सोने में से समय निकाल करके पढ़ना पड़ता, क्योंकि अगर परसेंटेज कम आएगी तो लोग कहेंगे और जाओ मंदिर और पढ़ लो और करो धर्म ध्यान। जी आगे नंबर नहीं, तो बहुत जिम्मेदारी हो गई। जिसको धर्म ध्यान करना उसकी तो बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई कि वो अपना धर्म ध्यान भी करेगा, सबको संतुष्ट भी रखेगा। तभी तो मजा है कि सबको संतुष्ट भी रखें और धर्म ध्यान भी करें। अगर ऐसा नहीं हो सके भैया तो ज्यादा संक्लेश होने लगे तब फिर मैं ये सलाह नहीं दूंगा आपको कि आप अपने धर्म ध्यान में मशगूल रहें और सबको संक्लेशित करें। उनको धीरे धीरे करके अपने स्वभाव से अपनी क्रियाओं से उनको भी शांत करें और फिर उसके बाद अपना धर्म ध्यान करें। हमको तो वहां झांसी में हमने देखा कि एक अम्मा जी थी, तो मतलब मैं अम्मा जी कह रहा हूं, आप लोग क्या कहेंगे, मम्मी कह लो, मम्मी में ऐसा लगता है कि जैसे छोटी हैं और अम्मा जी में थोड़ी बड़ी लगने लगती हैं, ऐसा हो जाता गड़बड़। तो वो तो मम्मी थी, वो किसी छोटे उनके बच्चे थे, तो वो कहती थी कि महाराज हमको तो हमारा इतना पुण्य तो नहीं है कि हमारे सब घर के लोग शामिल हों धर्म ध्यान में, लेकिन इतना हमारा पुण्य है कि जब भी हम मंदिर जाने का कहते हैं तो सब लोग कहते हैं कि फौरन तैयार हो हम छोड़ाएंगे। वो कहते हम छोड़ाएंगे, हम जाएंगे नहीं। बोले हमें आपके पास 3 बार आना है, तो हमारे जीवन साथी कहते हैं कि देखो हम तो मंदिर जा नहीं पाते, न महाराज के पास बैठ पाते, तुम बैठते हो बहुत सौभाग्य, तुम तो हमें बता देना, हमें ये सौभाग्य देना कि जब तुम्हें जाना हो तो हमें फोन कर देना, हम तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ने जाएंगे। और पूरे 4 महीने मैंने देखा उनको कि ऑफिस में फोन करती थी कि बस अब टाइम होने वाला 2:30 बजे मैं जाऊं, तो बोलते बस मैं आता हूं अभी, और 2:30 बजे फ्री लेकर के छुट्टी, और वहां से मेरे पास 10 मिनट में उनको छोड़ करके कब लौटोगे आप, शाम को हम 5 बजे आएंगे महाराज के पास से, या 6 बजे आएंगे, ठीक है तो हम ऑफिस से लौट करके आपको लेते हुए जाएंगे, आप किसी उससे नहीं जाना, रिक्शे से नहीं जाना, हमें ये सौभाग्य देना कि हम आपको लेकर हम इतनी सेवा करें। ऐसा भी कोई हो सकता, बड़ा आश्चर्य लगता था, ये भी पुण्य का उदय है, वो नहीं कर, लेकिन ऐसा भी बहुत मुश्किल है। आज तो ऐसा है कि अपन भी नहीं कर रहे और दूसरे को भी नहीं करने दे, ये बहुत मुश्किल होती है। और पाप आप करने के लिए नहीं, अगर आप ये कहो कि कहां गए थे, घूमने गए थे, कुछ नहीं बोलेंगे कोई भी, मंदिर गए थे तो जरूर बोलेंगे। हाँ आप ये कहो कि घूम रहे थे, हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, क्या कहीं नहीं जा सकते क्या, हमने इसलिए गृहस्थी की है क्या, हम मार्केटिंग करने गए थे, कुछ नहीं कहेंगे मार्केटिंग करने गए थे, मंदिर गए थे तो आग लग जाएगी फिर तो एकदम। ये होता है, ये पाप का उदय है इसलिए ऐसा हो जाता है। फिर भी अपन को धैर्य रखना चाहिए, धर्मात्मा को हमेशा बहुत धैर्य रख करके सबको संतुष्ट करके, कर तो नहीं सकते संतुष्ट, लेकिन फिर भी भावना तो यही भानी चाहिए कि किसी को हमारे धर्म ध्यान से क्षोभ उत्पन्न ना हो, हम शांतिपूर्वक अपना धर्म ध्यान करें और उसको भी हमारे जीवन से शिक्षा मिले। क्या आप, बस एक प्रश्न और, क्या आपको यहां से जाने के बाद हमारी याद आएगी कि नहीं? आएगी तो नहीं आएगी क्या, हम इतने पत्थर तो नहीं है, इतने दिनों में भी आप नहीं समझ पाए, और किसी को भी इतना पत्थर तो नहीं होना चाहिए कि जो दूसरे की भावनाओं को याद न रखे, दूसरे के अच्छाइयों को याद न रहे। सबके चेहरे तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन सब लोग ने बैठ के धर्म ध्यान किया है तो ये भी अपना कोई पूर्व पुण्य का उदय होगा। अपन ने ऐसे ही पहले भी सबने, इतने लोगों ने बैठ के धर्म ध्यान करा होगा, या नहीं भी करा होगा तो आगे अपन को अवसर मिलेगा ऐसा, एक साथ बैठे सामूहिक पुण्य का बंध होता है तब कभी कभी जो है, और सामूहिक पुण्य के उदय से हम बच जाते हैं बहुत सारी चीजें। तो याद तो आती है, लेकिन अब एक जगह लिखा है कि स्मृति करना बुरा नहीं है, स्मृति में आशक्त होना बुरा है। क्या मुझे माँ की याद नहीं आती, आती है, तो क्या याद आने से पाप लगेगा क्या, याद आने से पाप नहीं लगता, आशक्ति होने से पाप लगता है।
तो याद, आप कह रहे हैं कि क्या आपको याद आएगी कि नहीं आएगी, आएगी याद आएगी, जिन जिन लोगों के ज्यादा उसमें रहे होंगे। नहीं मतलब उनका ये है कि कहीं भी यहां से आप एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाएंगे, दूसरे से और कहीं भी जाएंगे, या कि चार महीने बाद, वो उनके तरफ से मैं बोल देता हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो आप चार महीने बाद भी जाएंगे, अभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं चार महीने बाद जाऊंगा, मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं नहीं तो आप हमारी बात को पकड़ लो, तो ऐसा कभी भी तो जाएंगे, कौन रह सकता है। लेकिन स्मृति तो अभी परसों भी यही बात शायद अपन लोग कर रहे थे कि कई लोगों को तो ये लगने लगता है कि अभी तो महाराज जी हमको यहाँ आहार में इतना ध्यान रख रहे हैं या हमसे बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद महाराज जी तो और कहीं चले जाएंगे, उनको हमारे जैसे और भी लोग मिल जाएंगे, फिर तो महाराज हमको भूल जाएंगे, हमेशा महाराज को तो नए लोग मिलते रहेंगे। नहीं भैया, मेरे अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है कि ये चीज और चीज और व्यक्ति में बहुत फर्क है, चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं, व्यक्ति को रिप्लेस नहीं कर सकते, एक व्यक्ति की जगह दूसरे को खड़ा नहीं कर सकते। आप ये सोचें कि आप नहीं हैं तो आपकी जगह पर कोई और होगा, नहीं आपकी जगह पे नहीं होगा, आपकी जगह वहां अलग सुरक्षित है, वो अपने लिए अलग आकर के और अपनी जगह बना लेगा। नया मित्र आवे इस शर्त पर कि पुराने को विदा होने पड़े, मुझे ऐसी मित्रता स्वीकार नहीं है। जो भी आता है वो अपना स्थान अलग बना लेता है और सबका अपना यूनिक होता है और सब अपना अपना कल्याण इसी तरह से तो करते हैं। अच्छा देखो, भगवान के पास अपन सब तो आते हैं, भगवान के लिए कौन अपना कौन पराया है, भगवान के लिए तो सब अपने हैं। ठीक इसी तरह का भाव अपने भीतर आना चाहिए, पर आ जाता है सामान्य रूप से, एक लगाव तो हो ही जाता, बहुत दिन तक एक जगह रहें तो हम लोगों को भी लगने लगता। अभी तो आपने ऐसा पूछा, एक ने तो ये पूछा था कि जब आप छोड़ के जाते तो आपको दुख नहीं लगता, याद आती है ऐसा नहीं, जब आपको दुख नहीं होता तो आता है, दुख आता है थोड़ी देर को लगता, और कैसा लगता कि देखो यहां तो इतने बढ़िया से सब लोग धर्म ध्यान कर रहे थे, अब आगे जाएंगे धर्म ध्यान ही तो करना है और क्या करना है, चाहे यहां रहें चाहे कहीं भी रहें। कई बार सोचता हूं फिर वहां जाऊंगा, क्या पता ऐसे लोग और बढ़िया धर्म ध्यान करने वाले मिले कि नहीं मिले, अपन ठीक है देखेंगे। तो वो चीज जो है मन के भीतर आती, तो इतना भाव तो आते ही, प्रशस्त राग तो रहेगा भैया, इतना तो नहीं है कि एकदम रूट हो जाएं या कि एकदम पत्थर हो जाएं। जब विवेकानंद के गुरु भाई नहीं रहे तब उनकी आंख भीग गई, तो लोगों ने कहा इतने पहुंचे हुए साधक और आपकी आंख भीग गई, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि जो संन्यास मुझे संवेदन शून्य होना सिखाए मुझे वो संन्यास नहीं चाहिए, मुझे पत्थर बनाने वाला संन्यास मुझे नहीं चाहिए, मेरे भीतर तो उतनी ही संवेदनशीलता रहनी चाहिए जितनी कि एक व्यक्ति में होनी चाहिए। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा
मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, मैत्री भाव जगत में पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, हे दीन और से करुणा स्रोत बहे, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, रहे ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, बने जहां तक उस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार। करूं।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।